रोहिणी मैया जैसे प्रारंभ करने ही जा रही थी अपना कथानक, तो आ गए कृष्ण, बलराम आ गए। तो जैसा भी सुभद्रा को आदेश था, उसने हर प्रयास किया कृष्ण और बलराम को दूर भेजने का। ये पड़ी छोटी छोटी बहन, बलराम इतने बड़े और के पास कृष्णा, तो एक नहीं मानी सुभद्रा की बात को, नहीं माना कृष्ण और बलराम ने। कहा हमने, हाँ ठीक है, हम अंदर तो नहीं जाएंगे, लेकिन यहां यहां खड़े होके सुनने में क्या आपत्ति है तुमको? तो वाह, क्या कर सकती थी बहन सुभद्रा। तो अब यहां सब ब्रजवासियों के विरह की कथा व्यथा हो रही है और पूरी की पूरी बात कृष्ण सुन रहे, बलराम और सुभद्रा सुन रहे, और क्या कहा जाए। कृष्ण और बलराम ने कुछ कल्पना तो की ही होगी कि हमारे वृंदावन में नहीं होने के कारण ब्रजवासियों का क्या हाल, क्या स्थिति होती होगी, कुछ तो कल्पना वे करते ही थे। लेकिन आज जो आंखों देखा वर्णन, जब वे सुन रहे थे, रोहिणी माता सुना रही थी, बस बस हो गया, और उनके लिए संभव था, बोल नहीं सकते थे, उसे छिपके तो सुन रहे थे, संभव होता तो माइक्रोफोन ऑफ कर देते या रोहिणी का मुख बंद कर देते, लेकिन वो करना संभव उनके लिए नहीं था। वे सुनते रहे सुनते रहे। नहीं 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 नहीं, सचमुच ये सच है क्या? हर बात जो नंद बाबा यशोदा कैसे हर रोज भोजन बना के रखती थी, आज लंच के समय आ सकता है कृष्ण? गोपिया वैजयंती माला तैयार रखती थी, कृष्ण आए और माला तैयार नहीं है, ये तो संभव, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज आ सकते हैं, हर रोज माला बनाए के रखती थी। गाय बछड़े तो महाराज क्या कहे, गिरिराज के पर्वत के शिखर पर जाके द्वारका की ओर एक टक लगा के देखा करते थे, कब आएंगे? सारा ब्रज विरह की ज्वाला ये महसूस कर रहा था। तो ये वर्णन कृष्ण बलराम और सुभद्रा सुन रहे। नहीं 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 हो सकता। तो मानो ऐसे कान से हम नहीं सुनना चाहते, अपना मानो अस्तित्व भी मिटाना चाहते हैं। तो इसी के साथ ये हुआ कि उनके कान बाहर नहीं रहे, हाथ भी ऐसे शरीर में प्रवेश किए, पैरों की भी वही स्थिति, और आंखें अचरज के कारण रियली सचमुच ऐसे कहते कहते, हम भी जब कुछ बड़ी अचरज वाली बात सुनते हैं तो हमारी आंखें जैसी मोटी होती जाती रहती, खुलती रहती है। सो दिस वॉज आई ओपनिंग एक्सपीरियंस भगवान का, आंखें खुल रही, सचमुच ये सच है क्या? क्या कह रही हो? तो उस समय जो भगवान के वपु विग्रह शरीर रूप की स्थिति हुई, वो जैसे रूप बना, वही रूप है हम सभी के समक्ष। जगन्नाथ स्वामी की
जय,
जय बलराम, सुभद्रा मैया की
जय।
ये वही कृष्ण है। जगन्नाथ कृष्ण, ये बलराम है, सुभद्रा है, ये ऐसे रूप क्यों हुए, इसके पीछे का ये रहस्य है, ये रहस्यमय लीला है। भगवान ने जब अपने भक्तों की विरह की गाथा व्यथा पहली बार अपने कानों से सुनी तो भगवान के शरीर का रूप का ये हाल हुआ। भक्तों का स्मरण करने वाले भगवान हैं। भक्तों के सदैव साथ रहना चाहते हैं ये प्रभु। अपने भक्तों को कोई कष्ट है तो वो स्वयं दुखित होते हैं प्रभु। ये सबका दर्शन है कि जगन्नाथ पुरी के जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह के दर्शन में परम दयालु दीनानाथ। जगन्नाथ स्वामी की
जय।
अब ऐसे भगवान जो ब्रजवासी गए थे वृंदावन से, उनका पूरा इरादा था कि अब जब मिलेंगे कृष्ण बलराम से, उनको हम वृंदावन लाएंगे, उनको खींच के लाएंगे वृंदावन, उनको छोड़ेंगे नहीं। तो जब वे बैठे थे रथ में, दो भाई एक बहन, तो ब्रजवासियों ने, इसमें गोपिया है उनकी प्रधानता है, उन्होंने उस रथ को खींचना प्रारंभ किया, वृंदावन की ओर ले जाना है, अब वृंदावन ले जाएंगे कृष्ण। रस्सी तैयार है, ये जगन्नाथ पुरी की जो रथ यात्रा है, जिसका कम से कम आप आजकल दूरदर्शन पर तो दर्शन करते ही होंगे, या आप में से कुछ गए होंगे या पढ़े होंगे, तो जो दृश्य है, वो जो भाव है, इसके पीछे का ये लीला, ये प्रसंग, ये रहस्य का हम संस्मरण कर रहे थे। तो वैसे उस वक्त भी नहीं आए प्रभु वृंदावन, और एक बार उन्होंने आया से, अभी अभी आता हूं, हां हां, उस वक्त तो कई सारे असुरों का संहार मुझे करना था, अब तो कुछ बैलेंस कुछ ही थोड़े ही बचे हैं, उनको ऐसे समाप्त करके मैं अभी तो तुरंत ही लौट आऊंगा, ऐसा पुनः आश्वासन देके प्रभु द्वारका के लिए प्रस्थान किए थे। और जैसे कल की कथा में यस्टरडे हम लोग याद दिलाए थे आपको कि भगवान द्वारका से जब दंत वक्र के वध के लिए गए मथुरा के पास दतिहा ग्राम में, दंत वक्र का वध किया, वहां से भगवान विश्राम घाट गए जमुना के तट पर, विश्राम के वहां से वृंदावन जाते हैं, तो उन्होंने देखा कि कुरुक्षेत्र से लौटे हुए उस सूर्य ग्रहण के उपरांत जो कुरुक्षेत्र से लौटे वृंदावन वासी, वृंदावन तो आए लेकिन अपने घर नहीं गए थे, वृंदावन के बाहर ही प्रवेश द्वार पर ही रुके थे, इस आशा से कि उन्होंने वादा किया है, वचन दिया है आने का, तो जरूर आएंगे, तो वही रुके थे। तो प्रभु से जब उनका मिलना हुआ तो सभी ने आयो रे आयो रे आयो रे आयो रे करके स्वागत किया, पुनः उनके प्राण का संचार हुआ, जीवन प्राप्त हुआ उनको, और सुस्वागतम कृष्ण सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, ऐसे उन्होंने स्वागत किया है वृंदावन का, पुनः वृंदावन में पुनः श्री कृष्ण का। तो रथ यात्रा में जब हम लोग जब रथ यात्रा का आयोजन करते हैं, रथ को खींचते हैं, ये ब्रजवासियों की लीला है। ब्रजवासी वृंदावन के भक्तों के भाव में इस रथ को खींचना होता है, और रथ को खींचते खींचते कहां पर ले आना है, वृंदावन लाना है। मतलब भगवान को द्वारका से, या द्वारका के कृष्ण अब कुरुक्षेत्र में पहुंचे हैं, तो उनको कुरुक्षेत्र से या वृंदावन से, कुरुक्षेत्र से या द्वारका से वृंदावन ले आना है। तो जगन्नाथपुरी में जहां भगवान का जगन्नाथपुरी का भव्य मंदिर है, मुख्य मंदिर है, वहां से रथ यात्रा के दिन रथ को खींचते खींचते भगवान का रथ खींचते खींचते दूसरे एक मंदिर में ले जाते हैं, जिसका नाम है गुंडीचा मंदिर। तो गुंडीचा मंदिर में भगवान को ले जाना, मतलब गुंडीचा मंदिर वृंदावन माना जाता है वहां, मतलब जिस मंदिर में उनका सदैव निवास रहता है जगन्नाथ स्वामी का, वो है द्वारका या कुरुक्षेत्र, द्वारका ही समझिए, द्वारका से वृंदावन ले जा रहे हैं गुंडीचा मंदिर। वहां भगवान एक सप्ताह भर के लिए रहते हैं, और फिर पुनः उल्टा रथ होता है और पुनः अपने निज द्वारका मंदिर में, मुख्य मंदिर में आते हैं। ये भाव भी जैसे आज हमारे समक्ष ये छवि हमारे भक्तों ने रखी है आज के लीला के अंतर्गत, इसका समावेश है इस छवि का, दृश्य का। तो इसके संबंध की ये कुछ ही बातें, जैसे ये विषय बड़ा गोपनीय है, तो उसी कुरुक्षेत्र में अब हम लोग, या कृष्ण ही अब तक कुरुक्षेत्र में ही है, और कई सारी मंडलियां आके मिल रही है भगवान से, देश प्रदेश विदेश के भक्त मिल रहे हैं, मित्र मिल रहे हैं, कई शत्रु भी मिले होंगे। और अब एक विशेष मंडल, ऋषि मुनियों का मंडल उनको मिलने के लिए आ पहुंचा है। इति संभाषमाणासु स्त्रीभिः स्त्रीषु नृभिः नृषु, ऐसे संभाषण जब हो रहे थे स्त्रियां स्त्रियों के साथ, पुरुष पुरुषों के साथ, कृष्ण की कथा जहां तहां कर ही रहे थे, इतने में उन्होंने देखा कृष्ण राम दिदृक्षया, कृष्ण और राम मतलब बलराम को देखने के उद्देश्य से, दर्शन हेतु कई सारे ऋषि मुनि वहां आ पहुंचे, और उनके नाम कहे हैं द्वैपायनो मतलब व्यास, नारदश्च, श्रवण ऋषि आए हैं, देवल असित विश्वामित्र शतानंदो भरद्वाज गौतम राम मतलब परशुराम सशिष्य हो, परशुराम तो अपने शिष्यों के साथ आए हैं, भगवान वशिष्ठ आए हैं, भृगु पुलस्त्य कश्यप मार्कंडे ऋषि आए हैं, बृहस्पति ही अंगिरा ऋषि, अगस्त्य यज्ञवल्क वामदेव आदया परे, और ऐसे कई असंख्य ऋषि मुनि वहां पहुंचे हैं। देखिए कितने नाम, सुखदेव गोस्वामी को स्मरण है, तो भी हम तो इसको देख के पढ़ते हैं। सुखदेव गोस्वामी को तो सारे नाम स्मरण है, उनके पास समय होता था और 100-200 नाम जरूर कहते हुए। तान दृष्ट्वा सहसा उत्थाय प्रागासीना नृपादयः। तो कृष्ण बलराम कई राजा महाराजाओं के साथ बैठे थे, तो उन्होंने जब देखा कि ऋषि मुनि उनकी ओर आ रहे हैं तो उठ के खड़े हुए उठे, और वे स्वयं ही नहीं उठे, सभी राजा लोग भी उठे। कोई महान व्यक्ति जब सभा में पहुंच जाता है या समक्ष आ जाता है तो ये परिपाटी है, ये सदाचार है, हमें उठ के, वो व्यक्ति चल के आ रहे हैं उनको देखते ही हमें उठना चाहिए उनके स्वागत के लिए। कृष्ण हमें सिखा रहे हैं। तो कृष्ण पांडव भी प्रणेमु, सबको, सब ऋषि मुनियों को नमस्कार। और कैसे है ऋषि मुनि? विश्ववंदितान, विश्ववंदित, विश्व जिनका वंदन करता है, वंदनीय है, प्रातः स्मरणीय है। ताननर्च यथा सर्वे सह रामो अचितो अर्चयत। तो प्रणाम करके स्वागत भी हुआ है, और साक्षात अच्युत श्री कृष्ण अब उनका पूरा 16 उपचारों के साथ उनकी अर्चना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। आसन दिया है, पाद्य अर्घ्य पुष्पमाला धूप चंदन आदि, चंदन का लेपन हुआ है। उवास सुखम आसीनाम, और सभी को आसन दिए हैं जिस पर वे सुख पूर्वक बैठ सकते हैं। धर्म गुप्तनु सदस्तस्य महतो यतवाचो अनुश्रण्वतः। और जब सब बैठे थे या बैठ गए अपने अपने आसनों पर, तो श्री कृष्ण कहे, कैसे श्री कृष्ण? धर्म गुप्तनु, धर्म के रक्षक या धर्म के रक्षा के लिए अवतीर्ण हुए भगवान श्री कृष्ण, उनको संबोधन किए। श्री भगवान उवाच, क्या कहा उन्होंने? अहो वयम जन्म भृतो लब्धम कार्ष्णेन तत्फलम देवानामपि दुष्प्रापम यद योगेश्वर दर्शनम। आप इतने सारे योगेश्वर, महामुनि, ज्ञानी, देवर्षि, राजर्षि, महर्षि पहुंचे हो, हमें दर्शन हो रहा है, हमारा जीवन सफल है, ऐसा दर्शन तो देवानाम अपि दुष्प्रापम दुर्लभ है। देवताओं को भी इस प्रकार का दर्शन दुर्लभ है जो हमें आज यहां प्राप्त हो रहा है। और श्री कृष्ण कहते हैं, किम स्वल्प तपसाम नृणाम अर्चायाम देव चक्षुषाम। जिनकी तपस्या अल्प तपस्या है, जिन्होंने कम तपस्या की है या तपस्या नहीं की है, नृणाम अर्चायाम देव चक्षुषाम, या जिन्होंने कोई पूजा अर्चना नहीं की है अपने इष्ट देवों की, दर्शन स्पर्शन, उनको आप जैसे महाजनों का, भक्तों का, संतों का, महंतों का दर्शन या स्पर्श आदि आदि संभव ही नहीं है। महाप्रसादे गोविंदे प्रसाद का समय नहीं हुआ है, हमारे भक्त जानते हैं प्रसाद का समय होते ही वैसे किसी को जगाना है तो जगाने का मंत्र क्या है, महाप्रसादे गोविंदे कहने से हरे कृष्ण आंदोलन भर में विश्व भर में जानते हैं प्रसाद का समय हो गया। तो कुछ अर्ध निद्रा में है तो टूट पड़ते हैं, ये हुआ जगाने का मंत्र। और किसी को सुलाना है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मतलब भागवत कथा का प्रारंभ है तो फिर और ऐसे ऐसे वालों को ओम नमो भगवते के बजाय महाप्रसादे गोविंदे कहो छलांग मार के। तो भी प्रसाद से आकर्षण है, प्रसाद साक्षात भगवान है, भगवान का स्वरूप है, अन्न पर ब्रह्म। तो ऐसा भी आकर्षण नहीं होता, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणी वैष्णवे, भगवान के नाम में या वैष्णवों में, प्रसाद में भगवान के नाम में वैष्णवों में विश्वासो नहीं वजायते, विश्वासो नहीं वजायते, विश्वास नहीं होता है किसका, स्वल्प पुण्यवताम, स्वल्प पुण्यवताम, जिनका पुण्य स्वल्प है अल्प है नहीं के बराबर है या नहीं ही है, उनका विश्वास नहीं है भगवान के प्रसाद में या वैष्णवों में संतों में। वही बात यहां भगवान कह रहे हैं, संतों में विश्वास है तो फिर धर्म का दर्शन भी संभव होगा, और उनके दर्शन से फिर कृष्ण का दर्शन। यश्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यश्य अप्रसादान नगति कुतोपि, ये सिद्धांत है। उनका कृपा प्रसाद प्राप्त होगा तो भगवान प्राप्त होंगे, कृष्ण दर्शन होगा। अप्रसादान का संतों का प्रसाद नहीं मिला तो फिर न गति, फिर आगे कहीं बढ़ना है ही नहीं। सत्संग का महात्म्य भी यह बताया जा रहा है, और सत्संग प्राप्ति के लिए भी तपस्या, तपस्या का फल सत्संग प्राप्ति है, और सत्संग प्राप्ति से हम लोग अधिक तपस्वी बनेंगे।